दशम स्कंद 31वां अध्याय पहला श्लोक। गोप्या ऊचुहु जयति तेधिकं जन्मना व्रजा तेधिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वदत्र हि इंदिरा शाश्वदत्र हि दैत दृश्यता दीक्षुतावका त्वयि धृता स वास स्वां विचिन्वते जयति तेधिकं जन्मना व्रजा
जयति तेधिकं जन्मना व्रजा
श्रयत इंदिरा शाश्वदत्र हि
दृश्यतावकी
धृता च त्वां विचिन्वते जयति तेधिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वदत्र हि दैत दृश्यतां
दीक्षुतावकायि
धृता स वास त्वां विचिन्वते
जयति
The gopi said, Jayati is glorious, Te your Adhikam exceedingly, Janmana by the birth, Prajaha the land of Praja, Shrayate is residing, Indiya Lakshmi, the goddess of fortune. Drishyatam, may you be seen. Dikshu, in all directions. Tavakaha, your devotees. Twai, for your sake. Dhrit, sustained. Asavaha, their life heirs. Swam, for you. Vichinvate, they are searching. Translation and purport by the disciples of His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Shri Prabhupada. Translation, the gopis said, O beloved, your birth in the land of Raj has made it exceedingly glorious, and thus Indira, the goddess of fortune, always resides here. It is only for your sake that we, your devoted servants, maintain our lives. We have been searching everywhere for you, so please show yourself to us. Purport: those who are familiar with the art of chanting Sanskrit verses will be able to appreciate the especially exquisite Sanskrit poetry of this chapter. Specifically, the poetic meter of the verse is extraordinarily beautiful, and also, for the most part, in each line, the first and the seventh syllables begin with the same consonant as do the second syllables of all four lines. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtham Sthapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamaiham Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Gurau Shri Uta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Rakunathanvitam Tamsajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamsha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shri Mate Bhakti Vedanta Swami Itinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschati Deshatarine Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namane Gauravishe Namaha He Krishna Karuna Sindho Srinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Saptakanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज दशम स्कंध के जो सर्वोच्च रेवल्यूशन, सर्वोच्च जो भगवान के लीला के बारे में हमें वर्णन मिलता है, जो दशम स्कंध के 29वें अध्याय से 33वें अध्याय, इनको कहा गया है रास पंचाध्याय। तो इन रास पंचाध्याय में भगवान की रास लीला का वर्णन होता है। तो हम कल्पना कर सकते हैं कि अगर कोई सर्कल है, सर्कल समझे, हिंदी में सर्कल वर्तुल बोलते हैं, सर्कल सब समझते हैं। तो अगर हम गोलाकार अगर हम विचार करते हैं तो सब जो वेद शब्द है, वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। तो जो भी ज्ञान है वो एक बहुत विशाल गोलाकार है, पर उसमें से महत्वपूर्ण ज्ञान क्या है, जो भगवान के बारे में ज्ञान है। तो जो अलग अलग धर्मों में जो ज्ञान है, तो एक बड़े गोलाकार के अंदर एक छोटा गोलाकार है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, तो उसमें वो भगवान का ज्ञान है। भगवान का ज्ञान अनेक धर्मों में है, पर उसमें केवल सनातन धर्म में, वैदिक शास्त्रों में भगवान का विशिष्ट ज्ञान है कि भगवान कौन है, भगवान कैसे दिखते हैं, भगवान क्या करते हैं। ये अगर हम बाइबल या कुरान ये ग्रंथ पढ़ते हैं तो वो भी भगवान की ही वाणी है। तो मैं कई बार इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस को जाता हूँ, यूनेस्को की ओर से कभी बुलाया जाता हूँ लेक्चर देने के लिए, तो अलग अलग धर्मों के लोगों से भी बातचीत होती है। तो बाइबल कुरान भी बहुत थोड़ा थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो उसमें देखते हैं कि वो क्या है, सिर्फ नियम है कि ऐसे करो तो आपको भगवान आशीर्वाद देंगे, ऐसे करेंगे तो आपको सजा मिलेगी। भगवान का ज्यादा ज्ञान उनमें नहीं है, भगवान का ज्ञान वैदिक ग्रंथों में। तो इसलिए एक और अगर हम गोलाकार बनाएंगे, तीसरा गोलाकार, पहला संपूर्ण ज्ञान जो है, दूसरा भगवान के संबंध जो भी ज्ञान जिस भी शास्त्रों में है, तीसरा जो भगवान के संबंध में विशिष्ट ज्ञान वैदिक शास्त्रों में है। और वैदिक शास्त्र भी विशाल है, ऐसे अंदाजा लगा जाता है सब वेद, चार वेद, 108 उपनिषद, 18 पुराण, इतिहास, रामायण महाभारत, ये सब मिला के लगभग 100,000,000 श्लोक आते हैं, 100,000,000, 10^10। ये विशाल है, पर इनमें देवी देवताओं की पूजा के बारे में है, विष्णु के बारे में सब शास्त्रों में है, पर जो विशेष भगवान विष्णु पे जो फोकस है, एकाग्र रूप से उनके बारे में जो वर्णन है वो भागवतम में है। इसलिए भागवतम ये एक चौथा गोल रहता है, इसलिए भगवान के बारे में और विशेष ज्ञान मिलता है। और भागवतम जानते हैं कि भगवान का दर्शन कराता है हमें, वैदिक भाषा में संस्कृत में दर्शन इस शब्द का एक अर्थ यह भी होता है तत्व ज्ञान। तो भागवतम का तत्व ज्ञान हमें भगवान का दर्शन कराता है। और लोग मंदिर में आके भगवान को हाथ जोड़ के चले जाते हैं, पर भगवान कौन है, भगवान कैसे हमारे प्रेम के सर्वोच्च व्यक्ति और वस्तु है, यह हमें तत्व ज्ञान समझता है। तो इसलिए भागवतम ये विशेष है। और भागवतम जो है पहला स्कंध जो है भगवान के चरण कमलों के समान है, और ऐसे जैसे ऊपर ऊपर जाते हैं तो आगे आगे के स्कंध जो है, दशम स्कंध जो है वो भगवान के सुंदर मुख के समान है। तो दशम स्कंध के जो 5 अध्याय है वो भगवान के सुंदर स्मित के समान है। वेणुम कणंतम अरविंद दलायताक्षम बरहावतम समसितम बुद सुंदरांगम कन्दर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंद मालि पुरुषम तमहम भजामि। तो जो ब्रह्मा जी श्लोक में वर्णन करते हैं, वह भगवान का जो सुंदर चेहरा है दशम स्कंध में लिखता है, उनका सुंदर स्मित जो है वह इस श्लोक में आता है, इस 5 अध्याय में। तो इन 5 अध्याय पे हमारे गौड़िया वैष्णवाचार्यों ने विस्तार रूप से टिप्पणी लिखी है, और प्रभुपाद जी के एक वरिष्ठ शिष्य है गरुड़ प्रभु नाम के, उन्होंने इस राग पंच अध्याय में पीएचडी किया है, इन पांच अध्याय में पीएचडी किया है और उससे उन्होंने किताब लिखा है द डांस ऑफ डिवाइन लव। तो जो भी मैं आज और कल के प्रवचन बोलूंगा वो उस किताब के आधार पर, प्रभुपाद जी के कृष्णा बुक और यहाँ पर भागवत की किताब पढ़े उसके आधार पर कुछ बोलने का प्रयास करूंगा। जो भगवान की रासलीला है वह साधारण लोगों के लिए बहुत ही विचित्र लगती है। तो रासलीला का वर्णन करिए पहले, ये भागवतम का वर्णन मैं पूरा करता हूँ। जो पांच अध्याय है रास पंचाध्याय जिसे कहते हैं, तो उसमें पहले अध्याय में भगवान बांसुरी बजा के सब गोपियों को बुलाते हैं, तो गोपियां जो भी कर रहे छोड़कर जंगल में आ जाती है और फिर भगवान उनसे थोड़ा मजा करते हैं, कहते हैं कि तुम किस लिए आई हो, जंगल का देखना था, चांद को देखना था, अभी देख लिया, जाओ अभी रात को आपको अकेले रहना चाहिए। तो वो तो नाराज होते, कहते तुमने हमको बुलाया अभी क्यों वापस भेज रहे हो। और फिर भगवान नृत्य करने लगते हैं और देखते हैं भगवान की गोपे थोड़ा सा गर्व आ गया उन्हें कि परम पुरुषोत्तम भगवान हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं। जैसे ही भगवान गर्व देखते हैं चले छोड़ के चले जाते हैं। तो दूसरे अध्याय में पहले अध्याय के अंत में भगवान लुप्त हो जाते हैं। हम देखते हैं कि गोपियों में अगर गर्व आ जाता है तो भगवान उनको भी छोड़ के जाते हैं। तो हमारे पास भगवान आए ही नहीं है, हमें गर्व आ जाएगा तो क्या होगा। तो गर्व से बहुत बचना है। तो दूसरे अध्याय में गोपियां सब जगह ढूंढ रहे हैं भगवान को, कहाँ है, सब जगह ढूंढते हैं, भगवान की लीलाओं का स्मरण करते हैं, भगवान की लीलाओं का अनुकरण करते हैं। तो स्मरण से पागल हो गए और वृंदावन के जंगल के अंदर दूर तक चले जाते हैं, इतना दूर तक अंदर चले जाते हैं कि वहां पे उनको चांद की रोशनी भी अंदर नहीं जा रही, इतना अंधकार होता है, इतना अंदर चले जाते हैं। वहां पे फिर उनको लगता है अभी हम भगवान को नहीं ढूंढ पाएंगे, तो हताश होकर वापस जंगल से बाहर आते हैं और यमुना के तट पे आकर बैठ जाते हैं। और यमुना के तट पे आकर बैठ कर भगवान से याचना कर रहे हैं कि प्रभु आप ना प्रकट हो जाओ हमारे बीच में। तो उनकी जो प्रार्थना याचना है वो है ये गोपी गीत। तो इस गीत इस अध्याय में 19 श्लोक है और ये 19 श्लोक है ये गोपी गीत कहते हैं। तो गोपी गीत जो है गोपियां अपना जो हृदय का विरह है उसको व्यक्त कर रही है, भगवान को पुकार रही है। तो चौथे अध्याय में इसके बाद इस अध्याय के अंत में इन प्रार्थनाओं को अर्पण करने से भगवान प्रकट हो जाते हैं पुनः। और फिर चौथे अध्याय में भगवान और गोपियों का वार्तालाप होता है, वो प्रसिद्ध संवाद है। जब गोपियां कहते हैं कि अलग अलग प्रकार के प्रेमी होते हैं, एक प्रकार का प्रेमी होता है जब आप प्रेम करते हैं तो वो आदान प्रदान करता है, दूसरा प्रेम प्रकार होता है वो आदान प्रदान करता ही नहीं है, तीसरा होता है जो आदान प्रदान करता है और फिर बीच में छोड़ के चला जाता है। तो तुम किस प्रकार के प्रेमी हो? तो भगवान कहते हैं नहीं, जब तुम प्रेम कर रहे हो तो मैं तुमसे ज्यादा तुमसे प्रेम करता हूँ। हमको छोड़ के क्यों चले गए फिर आप? लेकिन तुम्हारे प्रेम को बढ़ाने के लिए, क्योंकि विरह जब होता है तो प्रेम की तीव्रता और बढ़ जाती है। राधा रानी की प्रसिद्ध प्रार्थना आती कहती है कि हे प्रभु मैं आपसे विरह अधिक प्रेफर करती हूँ, प्रेफर उसको अच्छा मानती हूँ आपसे मिलन के ज्यादा। क्यों? क्योंकि आपसे जब मिलन होता है तब मैं आपको एक ही जगह पर देख सकती हूँ, पर जब आपसे विरह होता है तो सब जगह आप मुझे दिखते हो। तो ये प्रेम का भाव है। तो ये विरह का एक भौतिक उदाहरण, विरह का जो भाव है उससे कैसे भगवत चेतना तीव्र हो जाती है इसका हम एक भौतिक उदाहरण ले सकते हैं। मान लिया आपकी कोई कमरा है, कमरे की चाबी है आपकी, तो चाबी जब होती है तो होती है, उसके हम ज्यादा सोचते हैं पॉकेट में होते हैं खोल लेते हैं और चले जाते हैं। तो चाबी जब घूम जाती है चाबी कहाँ है, चाबी कहाँ है, चाबी कहाँ है, चाबी कहाँ है, हम ढूंढते हैं। तो जब चाबी से विरह हो जाता है तो चाबी की चेतना और बढ़ जाती है। तो वैसे ये भौतिक उदाहरण है और भगवान व्यक्ति है, भगवान कोई चाबी नहीं है, फिर भी हम उसकी एक झलक देख सकते हैं जो भगवान की जो विरह में भक्तों की क्या तीव्रता हो जाती है भगवान की प्राप्ति के लिए। तो चौथे अध्याय में कि अंत में भगवान गोपियों को मना देते हैं ले कि तुम्हारे प्रेम को बढ़ाने के लिए मैं आपसे के दृष्टि से गोचर हो गया था। और पांचवे अध्याय में भगवान और गोपिया पुनः रास नृत्य करते हैं और बताते हैं कि ब्रह्मा जी के एक रात के लिए मतलब 4.3 मिलियन ईयर्स उतने समय के लिए भगवान उस काल को बढ़ा देते हैं और उतने समय तक वो नृत्य करते हैं। तो और उसके बाद में गोपियां घर लौट जाती है, घर लौट जाती है तो योग माया से के प्रभाव से उनके घर वालों और पति बाकी सब लोगों को समझता ही नहीं क्या हुआ है, उनको स्वागत कर लेते हैं घर में। तो ये कहानी है और इसमें जो ये है 5 अध्यायों के बीच में ये अध्याय आता है गोपी गीत, साथ साथ बाकी सब अध्याय जो है वो उसमें कुछ एक्शन हो रहा है, भगवान बात कर रहे हैं, गोपिया भगवान गायब हो गए, गोपिया उनको ढूंढ रही है। तो इस लीला में कोई एक्शन, इस अध्याय में कोई एक्शन नहीं है, पर बहुत एक्शन है। एक्शन क्या है? द एक्शन ऑफ इमोशन। गोपियों की क्या तीव्र भावना है वो इन श्लोकों से प्रकट होती है। और गोप्या ऊंचू, साधारण हम उवाच शब्द देखते हैं और यहाँ पे गोपी नहीं है, गोप्या है। गोप्या यानी प्लूरल है, बहुवचनी है ये। तो हमारे हमारे संप्रदाय के आचार्यों ने विवरण किया है कि हर एक श्लोक जो है ये एक एक गोपी बोल रही है, पर हर एक गोपी जो बोल रही है वो संपूर्ण गोपियों के जो ग्रुप है, जो मेल है, उनके प्रतिनिधित्व करते हुए बोल रही है वो श्लोक, इसीलिए ये बहुवचनी है। और आचार्यों ने ये गोपियों का जो श्लोक में जो भाव है उससे ये भी विश्लेषण करके निकाला है कि कौन से गोपी ने कौन सा श्लोक बोला है। जो 19 श्लोक में अलग अलग 19 गोपियों ने श्लोक बोला हुआ है तो उसकी चर्चा में हम नहीं जाएंगे, पर ये कहने ये सब मैं पार्श्वभूमि क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत हमारे आचार्य को महत्वपूर्ण माना है। तो जो इससे पहले 18 श्लोक है वो जो प्रसिद्ध वैदिक छंद है उसको त्रिष्टुप कहते हैं, भगवद्गीता के श्लोक भी इसी छंद में गाए जाते हैं उस छंद में। और जो क्लाइमैक्स जो होता है आखिरी श्लोक जो है वो यत्ते सुदच्च सुचरणाम बृहस्थनेशु, वो जो श्लोक आता है वो शकवारी छंद में है, वो सब गोपियों की भावना का क्लाइमैक्स है। और आयुष्यम्नः कि हमारा आयुष्य आपके लिए ही है, आपके बिना हम जी नहीं सकते, अभी हमने हमारा जीवन आपको दे दिया है और क्या चाहते हो आप और क्या दे सकते हैं हम आपको, वो क्या भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये जो रासलीला है ये बहुत से लोगों को समझ में नहीं आती है। दो साधारण प्रकार से प्रतिक्रिया होती है लोगों के रासलीला सुनने के बारे में। एक है जो खास करके पाश्चात्य देशों में जब लोगों ने भगवान की लीला के बारे में सुना और बोले क्या ये तो अनैतिक है, ये भगवान रात को गोपियों के साथ नृत्य कर रही है, अनैतिक है, ऐसे कैसे कर सकते हैं भगवान। तो ये थोड़े जो सो कॉल्ड पायस जो खुद को धार्मिक मानते हैं वैसे लोग ऐसे कहते हैं, और जो अधार्मिक लोग हैं वो कहते हैं भगवान ऐसे कर तो हम भी कर सकते हैं, उसमें क्या बोलोगे। पर ये दोनों गलत है। क्यों? क्योंकि वो दोनों सोच रहे कि गोपी और भगवान का जो संबंध है वो हमारे असाधारण स्त्री पुरुष के संबंध के समान है। वास्तव में ऐसे नहीं है, अगर ऐसा होता तो ये जो संपूर्ण रासलीला खत्म, रासलीला का वर्णन खत्म होता है तो उसके अंत में 33वें अध्याय के 39वें श्लोक में जो इस रासलीला की फलश्रुति आती है। फलश्रुति मतलब कि ये पुराणों की एक विशेषता है कि जब भी आप कोई अध्याय का श्रवण करते हैं वो श्रवण करने से आपको क्या फल मिलने वाला है, क्या फायदा होने वाला है वो बताया जाता है। साधारणतः पुराणों में ऐसा होता है कि आपको बहुत ऐश्वर्य मिलेगा, स्वर्ग प्राप्ति होगी, पापों से मुक्ति हो जाएगी, अलग अलग प्रकार के फल दिए जाते हैं। पर ये रासलीला के अंत में एक बहुत ही अनोखा फल बताया गया है। क्या है वो फल? विक्रीडितं रजवधूभिरिदं च विष्णो श्रद्धान्वितो अनुश्रुणुयादथ वर्णयेद्य भक्तिं परां भगवति प्रतिलभ्य कामं हृद्रोगमाश्वपहिनोत्यचिरेण धीरः। तो शुकदेव गोस्वामी कह रहे हैं विक्रीडितं रजवधूभिर, जो प्रभु ने व्रजवधू जो क्रीड़ा की है विक्रीडितं, इदं च विष्णु। तो संपूर्ण रास पंचाध्याय में भगवान को गोविंद, माधव, कृष्ण, मधुसूदन, गोपिका नंदन ऐसे नामों से बुलाया गया है। सिर्फ ये अंतिम श्लोक में भगवान को विष्णु इस नाम से संबोधित किया गया है। अभी विष्णु कभी क्रीड़ा नहीं करते, विष्णु बड़े गंभीर होते, जो विष्णु और कृष्ण में क्या संबंध है? विष्णु इज लाइक गॉड इन ऑफिस एंड कृष्णा इज गॉड एट होम. विष्णु जो है भगवान जब दफ्तर में होते हैं तो गंभीर रहते हैं और कृष्ण जो है भगवान घर में है. तो ये तो बहुत ही अंतरंग लीला है भगवान की. तो यहाँ पे विष्णु को भी शब्द इस्तेमाल किया है क्योंकि हमारी भौतिक मानसिकता होगी कोई साधारण लड़के लड़की का संबंध है तो नहीं, ये वही विष्णु है जो यज्ञेश्वर है, जो सारे देवी देवता है आकर श्वेता जो शिरोधक सागर के सामने आकर श्वेत द्वीप में भगवान से याचना करते हमको असुर से बचाओ, वो विष्णु यहाँ पे लीला कर रहे हैं. हमको याद दिलाने के लिए कृष्ण ने ही इस्तेमाल करते शब्द सुखदेव गोस्वामी, विष्णु इस्तेमाल करते हैं. और क्या कहते हैं आगे? श्रद्धान्वितो अनुश्रुणयाद अथ वर्णयेद. श्रद्धा के साथ जो इसका अनुश्रुणयाद, श्रुणयाद यानी श्रवण करना, अनुश्रुणयाद यानी परंपरा में श्रवण करना, उचित रूप से स्मरण करना. प्रभुपाद जी एक बार चेन्नई में थे और वहां पे एक लाइफ मेंबर के घर में रह रहे थे. उन्होंने देखा कि भगवान को काले कपड़े पहनाए हुए राधा कृष्ण दोनों को. तो साधारणतः भगवान को काले कपड़े कभी नहीं पहनाते हैं. तो प्रभुपाद जी ने पूछा भगवान को काले कपड़े क्यों पहने? नहीं, भगवान का मूड वैसा है आज. प्रभुपाद जी समझ गए कि सहजिया भाव है. और फिर उस रात को प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन कर रहे थे अपना, तभी वो पति पत्नी आ गए और बोले प्रभुपाद जी हमको आप रासलीला सुनाओ. तो फिर प्रभुपाद जी समझाया कि रासलीला ये बहुत चरम, बहुत ही उच्च साक्षात्कार है, ये हम समझ नहीं सकते हैं इसको जब तक हम शुद्ध नहीं, हमें सुनना नहीं चाहिए. नहीं नहीं, हम बहुत, हम बचपन से भक्ति कर रहे हैं, जिंदगी भर भक्ति की हमने, हम वो कहने का इतना स्पष्ट रूप से नहीं कहते, वो कह रहे थे कि हम पात्र है, आप जरूर सुनाओ हमको. तो अलग अलग तरह से बार बार प्रभुपाद जी बता रहे थे कि हैं हम सुन नहीं सकते, हमें पात्र नहीं है. फिर बाद में जब वो मानने को तैयार नहीं थे, प्रभुपाद जी बोले ठीक आप पात्र हो सकते हैं रासलीला सुनने के लिए, पर मैं पात्र नहीं हूँ रासलीला बोलने के लिए, आप किसी और को जाके ढूंढो. तो इसलिए ये कोई चीप चीज नहीं है, ये कोई सस्ती चीज नहीं है कि कोई भी बात करे. तो प्रभुपाद जी बोलते हैं जो रासलीला के बारे में बिना तत्व ज्ञान के बोलने का प्रयास करते हैं या उसका अनुकरण करते हैं वो रासलीला नहीं कर रहे, रासकल लीला कर रहे. तो ये जो है अनुश्रुणयाद अथ वर्णयेद, जो परंपरा में श्रवण करते हैं या वर्णन करते हैं, क्या होगा उनका? भक्तिम पराम भगवती, दो फल बोले गए हैं फलश्रुति में, आपको पराभक्ति प्राप्त होगी. और पराभक्ति यानी शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी. और साथ साथ रुद्रोगम आश्व अपहिनोत्य अचिरेण धीरः, कामम रुद्रोगम. हम सबको हृदय का विकार है. वो हृदय का विकार ये नहीं है कि किसी आर्टरी में प्रॉब्लम है, वीन में प्रॉब्लम है. हृदय का विकार है कि हम सबको काम वासना है और हम सबको बार बार हार्ट अटैक आते रहते हैं. काम वासना के अटैक करते हैं हमको. तो रुद्रोगम आश्व अपहिनोच्य अचिरेण धीरः, जल्दी ही क्या होगा, ये जो काम वासना है उसका नाश हो जाएगा. और दो बार बोलते अपहिनोच्य अचिरेण धीरः, आशु यानी तेजी से, अचिरेण यानी ज्यादा समय के बाद नहीं, और व्यक्ति धीर बन जाएगा. तो ये दूसरा विरोधाभास दिखाई देता है स्पष्ट श्रुति में. पहला विरोधाभास बोला मैं कि विष्णु नाम इस्तेमाल किया है, कृष्ण नहीं किया है. दूसरा है कि अगर जैसे लगता है अगर कि ये रासलीला साधारण पुरुष स्त्री का संबंध है तो हम तो लोग जाके मूवीज देखते हैं या इंटरनेट पे कुछ देखते हैं तो वो देखने से काम वासना कम नहीं होती है, काम वासना बढ़ती है. तो ये कैसे है कि सुखदेव गोस्वामी आश्वासन दे रहे हैं कि ये रासलीला के श्रवण से क्या होगा, काम वासना न केवल कम हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी. तो इससे भी हम समझ सकते हैं कि कुछ तो भी इसमें विशेष बात होगी, कुछ तो भी ऐसा है इस रासलीला में जो समझ नहीं पा रहे हैं, उसके कारण ये सुखदेव गोस्वामी ऐसे कह रहे हैं. और साथ साथ हम देखते हैं कि संपूर्ण भागवतम में, न केवल भागवतम, सब वैदिक शास्त्रों में काम वासना से कैसे व्यक्ति का विनाश हो सकता है या पतन हो सकता है इसका वर्णन आता है. और भागवतम के अनेक स्कंदों में इसका वर्णन आता है, जैसे कि अजामिल की व्याख्यान आता है छठे स्कंद में. पर इन सब में जितना भी कामवासना का खंडन किया गया है, सबसे अधिक खंडन आता है नौवें स्कंद में. नौवें स्कंद में तीन प्रसंग है, शौबरी मुनि, महाराज पुरुरवा और महाराज ययाति। तो अभी नौवें स्कंद में ही काम वासना का खंडन करने के बाद तुरंत दसवें स्कंद में क्यों सुखदेव गोस्वामी, अगर अरे काम वासना का ही कार्य है तो क्यों उसको गुणगान करेंगे? तो मतलब ये जरूर कुछ अलग है। और साथ साथ हम देखते हैं क्या पात्रता है उन व्यक्तियों की। सुखदेव गोस्वामी पूरी तरह से विरक्त थे, नग्न व्यक्ति को देखकर भी वो ईर्षित नहीं होते थे। परीक्षित महाराज राजा थे, पर सब त्याग कर दिया था, सब सिर्फ राजनेता का खाना पीना सोना भी त्याग कर दिया था। और चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार के विरक्त व्यक्ति थे, वो रासलीला का गुणगान कर रहे हैं। ये चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी अलग अलग शास्त्रों से श्लोक कोट करते हैं, पर भागवतम के एक अध्याय से अगर वो श्लोक ज्यादा कोट करते हैं तो वो है इस अध्याय से। भागवतम का कोई और अध्याय इतना नहीं है जहां से इतने श्लोक उन्होंने कोट किए हैं जितने इस एक अध्याय से किए हैं। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये सब इस रासलीला का गुणगान करते हैं। तो मतलब यह कोई साधारण भौतिक लीला नहीं है। एक बार परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज अमेरिका में एक प्रवचन दे रहे थे, तभी पीछे एक व्यक्ति बैठा था, लंबी दाढ़ी थी, फ्रेंच बियर था और सिगरेट फूंक रहा था। और फिर प्रवचन के बाद बोला, स्वामी जी, इंग्लिश में बात कर रहा था, मैं हिंदी में बताऊंगा, मैंने गीत गोविंद में पीएचडी किया हुआ है। जो गीत गोविंद है जयदेव गोस्वामी का संग, जयदेव गोस्वामी का लिखित ग्रंथ है, वो भी भगवान के माधुर्य लीला का वर्णन करता है, तो उसने पीएचडी किया है। और मैं जानता हूं ये कृष्ण गोपी वृंदावन में क्या करता है, तुम इतने कामी व्यक्ति की क्यों उपासना करते हो, कोई और व्यक्ति नहीं मिला कर तुमको भगवान बनाने के लिए? तो महाराज बोले, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यू सर, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव डन योर पीएचडी विदाउट पासिंग योर केजी। आपको आदर देते हुए बोलता हूं कि आपने आपका पीएचडी किया है पर आप केजी को पास नहीं किया। क्या मतलब? जो रासलीला है ये आध्यात्मिक साक्षात्कार की पराकाष्ठा है, और आध्यात्मिक साक्षात्कार की शुरुआत होती है यह समझिए कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और जब हम समझते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तो फिर हम जो शारीरिक भोग है उसको छोड़ते हैं। तो बोले कि आध्यात्मिक जीवन का केजी क्या है, इन नियमों का पालन करना, मांसाहार नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, नशापान नहीं करना और सिगरेट नहीं फूंकना। और सिगरेट फूंक रहा था। तो अगर हम इस तरह से भौतिक चेतना से देखेंगे तो कोई समझ नहीं पाएगा। तो व्यक्ति जो इतनी ऊंची लीला है, इतनी नीच की चेतना में कैसे समझ सकता है कोई? तो अगर हमें समझना है तो मैंने जो टाइम्स ऑफ इंडिया में एक कॉलम आता है स्पीकिंग ट्री नाम का, तो उसमें मैं लेख लिखता हूं। तो एक बार मैंने एक लिखा था, इज गॉड मेल और फीमेल, क्या भगवान पुरुष है या स्त्री है? तो उसने पहला चीज बताया, बिफोर वी कैन अंडरस्टैंड वेदर गॉड इज मेल और फीमेल, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी आर नीदर मेल नॉर फीमेल। कि अगर हमको समझना है कि भगवान नर है या मादा है, स्त्री है, पुरुष है या स्त्री है, उसके पहले हमको यह समझना है कि हम न तो पुरुष है और न ही स्त्री है, हम आत्मा है। जब तक हम खुद को पुरुष या स्त्री मानेंगे तो हम भगवान को भी उसी भौतिक दृष्टि से देखेंगे। तो इसीलिए सबसे पहली चीज है कि हमें समझना है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। उसके बाद में भगवान कौन है समझना है। प्रभुपाद जी को एक बार व्यक्ति बोले, स्वामी जी आप रासलीला के बारे में बताओ। प्रभुपाद जी ने पहले कुरुक्षेत्र लीला, बाद में रासलीला। मतलब क्या कुरुक्षेत्र लीला? मतलब भगवत गीता, पहले भगवत गीता समझो, फिर भागवतम समझने का प्रयास करो। तो हमें भारत में बहुत से लोग कहते कृष्ण, हम तो कृष्ण को जानते हैं, बचपन से कहानियां सुनते आ रहे, पर उनके कृष्ण की समझ क्या है? वो सोचते हैं कि कृष्णा इज अनदर एंटरटेनमेंट कैरेक्टर, जैसे हम अलादीन का जिन या ऐसे अलग अलग कहानियां, वैसे महाभारत है, रामायण भी है। तो वो जो है या तो काल्पनिक मानते हैं या ऐतिहासिक मानते हैं, बट कृष्णा इज नाइदर अ मिथोलॉजिकल पर्सनैलिटी नॉर अ हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी, ही इज अ सुप्रीम पर्सनैलिटी। वो परम पुरुषोत्तम व्यक्ति, परम पुरुषोत्तम भगवान है वो। तो अगर हम वो व्यक्ति का स्तर जाने बिना उसके कार्य को देखते हैं तो हम उसके कार्य को गलत समझ बैठेंगे। जैसे कोई आदिवासी व्यक्ति जंगल से आता है और उसको पता नहीं डॉक्टर कौन है, सर्जन क्या है, ऑपरेशन कैसे होता है, और वो आता है एक अस्पताल में और देखता है फिर ये व्यक्ति एक अच्छा खासा व्यक्ति है, उसको इंजेक्शन देता है, बेहोश करता है, उसका पेट काट देता है, और पेट काटने के बाद बाहर आता है तो उस व्यक्ति के रिश्तेदार उसको पैसे देते हैं। ये क्या बकवास चल रहा है, ये व्यक्ति हत्यारा है, गुनेगार है, और आपको पैसे क्यों दे रहे,
दफा हो जाओ बोले।
और लोग बोलेंगे उसको समझेगा नहीं वो, क्यों, व्यक्ति का स्तर पहले समझना चाहिए फिर उसका कार्य समझ सकते हैं। अगर वही व्यक्ति कोई न्यायालय में जाता है और न्यायाधीश को देखता है, न्यायाधीश कहते हैं कि दफा 302 के तहत इस व्यक्ति को फांसी की सजा दी जाती है, उसकी जगह अच्छा खासा व्यक्ति था और इस व्यक्ति न्यायालयाधीश के आदेश के कारण उसको फांसी की सजा सर गई, और फिर क्या होता है पुलिस इसको अभी गिरफ्तार नहीं कर रहे, पुलिस उसको अपने कार में बैठ के लेके जा रहे, क्या बकवास है, हत्यारा है वो,
तुम मूर्ख हो बोले।
तो ठीक उसी तरह से हम देखते हैं ये बहुत ही भाई लोग कहते हैं ये कृष्ण कृष्ण दो, हम जानते हैं कृष्ण क्या करते हैं, अरे बड़े बड़े सालों को बोले तुम मूर्ख हो, दफा हो जाओ, तुम समझ नहीं सकते कुछ। तो इसीलिए जब हमें सबसे पहले हम समझते हैं कम से कम बौद्धिक स्तर पे तभी कि हम कौन हैं और भगवान कौन है, फिर उसके बाद में हम भगवान की लीला के बारे में समझ सकते हैं, और फिर भगवान की लीला के बाद भगवान की रासलीला के बारे में। तो भगवान की जो लीला है वह एक बहुत ही आश्चर्यकारक पहलू है भगवान के व्यक्तित्व का, कि भगवान प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि एक ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर लैडस्टोन, तो वो उनके मिलने के लिए वाइस प्रेसिडेंट आए थे, वाइस डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर आए थे, और वो उनके थे तो बोले कि प्राइम मिनिस्टर बड़े महत्वपूर्ण काम में लगे हुए हैं, अभी बिजी है, वो नहीं आएंगे मिलने, तो कोई वो, कोई मिलने आया उनसे, हाँ किस कोई है उनके साथ, बोले प्राइम मिनिस्टर के बाद प्रधानमंत्री का तो मैं तो प्रधानमंत्री, मुझसे और महत्वपूर्ण कौन है, और दूसरे देश से कोई आया नहीं है। तो 5 मिनट 15 मिनट आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा बाहर बैठे थे, और सेक्रेटरी बोल जाओ के मैं अंदर, नहीं अभी नहीं जा सकते, बड़े महत्वपूर्ण मेहमान के साथ बात कर रहे हो, मेहमान के साथ है, बोले कौन है, उनको अच्छी लगी बता। तो थोड़ा सा उन्होंने खिड़की खोल के देखा, दरवाजा खोल के देखा, तो क्या था, वो जो लैडस्टोन प्रधानमंत्री थे उनका पोता था, और पोता ने उनको घोड़ा घोड़ा बनाया था, उनके फीट पे बैठ के खेल रहे थे, और वो इतने खुश थे खेल रहे थे उनका। तो वो प्रधानमंत्री है पर उनको प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री के ऐश्वर्य का राजत्व जो है उसमें आनंद नहीं मिल रहा है, किसमें आनंद मिल रहा है, अपने छोटे पोते के साथ घोड़ा बनने में आनंद मिल रहा है। तो इससे हमें थोड़ी पहलू झलक मिलती है कि भगवान भी, भगवान सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है पर अपना सर्वश्रेष्ठ जताने में भगवान को आनंद नहीं मिलता है, मैं भगवान हूं तुम सब मुझे आदर प्रणाम करो उससे मुझे आनंद मिलेगा, भगवान उसमें आनंद नहीं लेते हैं। भगवान क्या करते हैं, अपने जो अंतरंग पार्षद है, जो अभी वो उस प्रकार का जो खेल है वो वाइस प्रेसिडेंट के साथ नहीं खेलेगा, वो प्रधानमंत्री का नहीं खेलेगा, उनका घनिष्ठ संबंधी है, उनका पोता है, उससे यार खेलेगा। तो वैसे ही भगवान अपने बहुत ही घनिष्ठ साथियों के साथ, भक्तों के साथ क्या करते हैं, लीला करते हैं। तो ये लीला मतलब प्रभुपाद जी का ट्रांसलेट करते हैं पास्ट टाइम, अभी पास्ट टाइम को अगर इंग्लिश में अगर हम ट्रांसलेशन देखते हैं इंग्लिश डिक्शनरी में, तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, वेबस्टर डिक्शनरी, वो सब कहते हैं पास्ट टाइम इज लाइक अ प्ले, प्ले मतलब नाटिका। तो वास्तव में भगवान की लीला ये कोई नाटक या ड्रामा नहीं है, हमारा जो जीवन है वो ड्रामा है एक प्रकार से, क्योंकि हम अलग अलग भूमिकाएं करते हैं, एक जीवन में एक भूमिका होती है, दूसरे जीवन में दूसरी भूमिका होती है, पर फिर भी ये पास्ट टाइम शब्द क्यों इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि भगवान की लीला में अलग अलग भक्त एक भूमिका लेते हैं और वो भूमिका से वो आदान प्रदान करते हैं अपने भगवान के साथ। तो जो लीला है इसमें ये बड़ा विचित्र लगता है जिस व्यक्ति को लीला का तत्व पता नहीं है, लीला का रहस्य पता नहीं है, कि भगवान जिसे कुंती महारानी कहते हैं प्रथम स्कंद में, भीर अपियत विभेति गोप्या ददे त्वयि गता वृषि दाम तावत् याते दशाशु कलिलांजन संभ्रमाक्षं वक्त्रं निनीय भयभाव नयासि तस्य सामान विमोहयति भीरपियति। वो कहते हैं कि ये मुझे बड़ा विडम्बना, मुझे बड़ा विडम्बना लगती है कि हे प्रभु, आपको देखकर जो भय मूर्तिमान भय का रूप है वो डर जाता है, पर आपकी मां की छड़ी को देख के डर जाते हैं। कैसे संभव है ये? तो भगवान जब नाटक करते हैं, तो भगवान जब लीला करते हैं, तो ऐसे नहीं कि भगवान नाटक कर रहे हैं कि कुछ भय नहीं हो रहा है, कुछ हमें पता है मैं ड्रामा कर रहा हूं। नहीं, जब कोई भगवान लीला करते हैं, तो लीला का जो भूमिका है उसमें इतना अंदर चले जाते हैं कि भगवान वही भावनाएं अनुभव करते हैं। जैसे कोई अमीर व्यक्ति होगा, वो अगर ना कोई नाटक कर रहा है अपने मित्रों के साथ या अपने संबंधों के साथ, मैं भिखारी बन जाता हूँ, भिखारी की भूमिका अदा करता हूँ, तो फिर वो बोलता है कुछ खाने को दे दो, 3 दिन से कुछ खाया नहीं है। उसी दिन में 3 बार खाया है, पर फिर भी जब वो भूमिका करता है तो क्या उस भाव में चला जाता है और उस भाव में वो कार्य करता है। ठीक उस वजह से भगवान भी उस भूमिका में उसी भाव में चले जाते हैं। तो ये जो लीला है इसमें भगवान सेंट्रल एक्टर है। नाटक होता है तो उसमें एक्टर होते हैं, भगवान सेंट्रल एक्टर है, और ड्रामा होता है उसके डायरेक्टर होते हैं। तो डायरेक्टर कौन है? योगमाया। योगमाया सबको जो भी भावनाएं हैं, भूमिकाएं हैं, कॉस्ट्यूम्स है, वो सब दिलाती है, उसके अनुसार कार्य करते हैं। पर तो भगवान भी योगमाया के कार्य के अनुसार कार्य करते हैं, के मार्गदर्शन के डायरेक्शन के अनुसार कार्य करते हैं। तो इस तरह से भगवान भी कभी कभी भूल जाते हैं कि मैं भगवान हूं। क्या भगवान भूल सकते हैं? अभी देखते हैं हम दामोदर लीला में, भगवान भाग रहे डर से, और जब मां पकड़ लेते तो डंडा से मारो मत मुझे, आप जो भी करना है पर डंडा से मारो मत मुझे, तो फिर डर जाते हैं, आंखों से आंसू आ रहे हैं। तो मैं यह सोचा ठीक है, तुम्हें इतना डरना नहीं चाहिए, पर तुमको पकड़ देंगे तो मैं तुमको बांध दूंगा, और बांध के चले जाते हैं। फिर वो बोलते हैं कि ए मधुमंगल, ए सुदामा, ए सुदामा, ए कृष्ण, आओ मुझे छुड़ाओ आप, सब आते हैं, सब छुड़ाने का प्रयास करते हैं। फिर मधुमंगल हंस रहे, मधुमंगल तुम क्या हंस रहे हो? बोले कि मधुमंगल को थोड़ा पैर का समस्या होती है, तो जब वो सब मक्खन चुराने जाते हैं तो क्या होता है, बाकी सब गोप भाग जाते हैं और सब गोपियां मधुमंगल को पकड़ के बांध देते हैं। तो जो हमेशा मेरी गति तुम करते हो, आज तुम्हारी गति हुई है। मधुमंगल बोलते अच्छा हो गया, क्या तुम मुझे दगा दे रहे हो, मेरे मित्र हो या मेरे शत्रु हो? तो कृष्ण बोलते हैं, फिर बाकी सब गोप आते हैं और फिर उनको छुड़ाने का प्रयास कर रहे हो, छुड़ा ही नहीं सकते बोलते। और आचार्य बताते हैं कि जो 5 रस है उसमें साक्ष्य रस से ऊपर है वात्सल्य रस, और फिर से ऊपर है माधुर्य रस। तो वात्सल्य रस से यशोदा माई ने जो गाड़ बांधी है, तो वो साक्ष्य रस जो कम है उससे वो उनके गोप मित्र छुड़ा नहीं पाते हैं, तो इसीलिए बाद में नंद महाराज आके छुड़ाते हैं उनको। तो कृष्ण बड़े हताश हो जाते हैं और सब गोप बोलते हैं हम क्या करें अभी। और फिर तभी भागवत वर्णन आता है, फिर कृष्ण की आंखें पड़ती है वो दो यमल अर्जुन वृक्ष के ऊपर, और बोलते अरे मेरे भक्त नारद मुनि ने इस नलकुंवर मणिगुरु का आशीर्वाद दिया था कि मैं उनका उद्धार करूंगा। अभी भगवान का क्या भाव है कि अरे तुम मुझे छुड़ा नहीं पा रहे हो, और अभी अरे मेरे भक्त नारद मुनि। तो भगवान कैसे लीला होती है कि क्या भगवान सच में भूल जाते हैं? नहीं, भगवान ऐसे हम अचिंत भेदाभेद तत्व कहते हैं कि साइमल्टेनियसली वन एंड डिफरेंट। उसी तरह से जो योग माया सब डायरेक्शन कर रही है, सब वो डायरेक्शन कर रही है, पर जब डायरेक्टर होता है वो डायरेक्शन करता है तो एक स्क्रिप्ट होती है उसके पास, एक नाटिका का लिखा हुआ स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? मराठी हिंदी में स्क्रिप्ट, समझते हैं आप सब? स्क्रिप्ट होती है। तो ये भगवान की लीला का डायरेक्शन योग माया कर रहे, पर भगवान की लीला का स्क्रिप्ट है वो भगवान खुद ही लिखते। मतलब योग माया जो डायरेक्ट करती है भगवान की इच्छा के अनुसार ही करती है। मतलब देखिए कैसे है, भगवान जब नाटक लीला में भूमिका अदा कर रहे तो वो योग माया के डायरेक्शन के अनुसार कार्य कर रहे हैं। पर योग माया कैसे कार्य कर रही है? भगवान की इच्छा के अनुसार। तो भगवान ये अचिंत भेदाभेद तत्व से ही साइमल्टेनियसली अवेयर ऑफ हिज गॉडनेस एंड गॉडहुड एंड साइमल्टेनियसली नॉट अवेयर ऑफ हिज गॉडहुड। मतलब वो एक ही समय वो जानते हैं, मतलब वो नाटिका लिखे, उन्होंने नाटिका लिखी है, जो भी होने वाला नाटक है उनकी योजना के अनुसार हो रहा है। तो कभी कभी उस नाटक में अच्छा नाटक शब्द उचित नहीं है उस लीला में, क्योंकि नाटक का शब्द का क्या अर्थ होता है कि ये सब काल्पनिक है, नाटक होता है ये नाटक है और उसके बाद में खत्म होने वाला है, पर जो भगवान की लीला है ड्रामा, इट इज इटर्नल ड्रामा, हमेशा तक चलने वाली लीला है। पर ये लीला क्या है समझने के लिए उदाहरण रहे, तो जो ड्रामा का जो एक अर्थ हम साधन निकालते अनरियल वो नहीं है, दैट इज लीला इज द हाइएस्ट रियलिटी, सर्वोच्च सत्य है। तो उसमें भगवान इस प्रकार से अपने ही स्क्रिप्ट के अनुसार कभी अपना भगवत्ता दिखाते हैं और कभी अपनी भगवत्ता को छिपाते हैं, और इस तरह से भगवान भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं अपने भक्तों के साथ। तो जो भी भावनाओं का आदान प्रदान भगवान को करना है, तो अगर मान लीजिए भगवान को यशोदा माई के साथ अपने माँ के साथ वात्सल्य भाव में आदान प्रदान करना है, तो वात्सल्य भाव में तो भगवान इस तरह से कार्य करते हैं जिससे कि माँ यशोदा को सबसे अधिक आनंद होगा और जो वात्सल्य रस है सबसे ज्यादा बहेगा। तो इसीलिए भगवान एक नटखट बालक का बालक की भूमिका अदा करते हैं और भगवान जाके चोरी करते हैं बाकी गोपियों से, बाकी जो वरिष्ठ गोपियां हैं उनके घर जाके चोरी करते हैं। तो अभी कुछ कुछ लोग पूछते क्या ये भगवान कैसे है, हमको चोरी नहीं करना चाहिए, भगवान क्यों चोरी करते हैं, उस लीला क्या है समझ नहीं पा रहे। अगर लीला को आगे देखेंगे, मान लीजिए अगर हमारे मंदिर में कुछ चोरी हो जाएगा तो क्या हम पुलिस स्टेशन में जाके संगीत गाएंगे, मेरे प्रिय पुलिसमैन हमारे मंदिर में किसी ने कुछ चोरी कर लिया है अभी हम क्या करें, बड़े आनंद से हम गीत गाएंगे। तो गोपियां शिकायत कर रही है पर वो गीत गा रही है उसके लिए। तो क्यों गा रही है, तो यशोदा भाई बोलती है कि कृष्ण क्यों चोरी कर रही है, कृष्ण को मैंने देखा कृष्ण तो घर में सो रहा है। तभी कृष्ण नाटक करके आ जाते हैं बाहर, अब मैया मुझे भूख लगी है, वो देखो अब भी उठे है वो, नहीं वो नाटक कर रहा है, वो पीछे के दरवाजे से अंदर आ गया और अभी सो रहा है। अच्छा कहा तुमने इनके घर में चोरी की थी क्या मक्खन की, मैं क्यों चोरी करूंगा, तुम तो इतना अच्छा माखन मुझे खिलाती हो और हमारी गैया तो उनकी गैया से बहुत ज्यादा अच्छी है, मैं क्यों उनके घर में माखन खाने जाऊंगा। तो मैं सोचती हाँ ये बात तो सही है, और फिर वो गोपियों के राजा पूछती कि वो क्यों है? हमारा माखन अच्छा है और तुम्हारा हमारे घर में क्यों आखिर माखन खाएगा वो। बोले हम भी जानते नहीं है, पर वो आता है और थोड़ा सा माखन खाता है और फिर बहुत माखन बंदरों को देता है, इतना बंदरों को देता है कि जब बंदर भी नहीं खाते तो बोलता है तुम्हारा माखन क्या है इतना खराब है कि बंदर भी नहीं खाते। तो कृष्णा बोलते सही है, तो कृष्ण हो जाते कृष्णा वो बोलते है कि तुम माखन खाते हो थोड़ा तो ज्यादा बंदरों को खिलाते हैं। ओ मैया वो अपने माखन को अच्छे से रखते नहीं है इसलिए बंदर आकर तोड़ देते हैं और फिर मुझे भेज देते हैं वो। अच्छा तो फिर ऐसे यशोदा इधर से उधर जाती है इधर से उधर जाती है, फिर अंत में तो शुरुआत में भगवान बोलते मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो, और अंत में जब गोपियां बता दी कि उसने खाया ही है और फिर मैं तुम खाया है कि नहीं, तो कृष्ण बोले मैंने ही माखन खायो। तो इस तरह से वे मान लेते हैं। तो अभी ये सब लीला है वो किस लिए करते हैं, तो फिर वो एक बार गोपियां बोलती है कि वो तुम अपने माखन को छुपा के भी रखते, फिर कान्हा नहीं खावाएगा, नहीं छुपा के भी रखा तो वो ढूंढ लेता है, तो अंधेरे में रखना चाहिए, नहीं अंधेरे में रखा तो भी आपने उसको ऐसे गहने पहनाए हैं कि गहनों के कारण रोशनी आती है और देख लेता है वो, ठीक है गहने निकाल दोगे, नहीं गहने निकाल भी दोगे तो भी उसके शरीर से ज्योति वो देख लेगा, ठीक है तो फिर मैं उसको बांध के रख दूंगी ताकि वो आपके घर में माखन ना खाने चुराने को नहीं आएगा, नहीं फिर माखन चुराने आएगा तो हम माखन बनाएंगे किसके लिए। तो ये माखन चोरी ये पूरी एक लीला है, क्यों कर रहे हैं भगवान, ताकि ये अपने भक्तों से आदान प्रदान करे प्रियंका। तो ऐसे ही अपने साक्ष्य रस में अपने मित्रों के साथ आदान प्रदान करते हैं, तो ये वात्सल्य रस का आदान प्रदान है या साक्ष्य रस का आदान प्रदान है वो हम आसानी समझ सकते हैं, पर जो माधुर्य रस का आदान प्रदान है वह जब समझना होता है तो हमारे मन में शंका आ जाती है। तो हमें ये समझना है कि जो भी लीला हो रही है उसमें सब जो भक्त है वही सहभागी हो रहे हैं और भक्तों को भगवान से प्रेम के आदान प्रदान के लिए, भगवान की सेवा के लिए एक भूमिका दी जाती है। तो अभी ये साइकोलॉजी मनोविज्ञान का यह सत्य है कि जो स्त्री का शरीर है, स्त्री की मानसिकता है, वो सेवा के लिए सबसे तत्पर है। अगर कोई स्त्री किसी पुरुष को प्रसन्न करना चाहती है तो पुरुष 100 नौकरों को रखे तो भी पसंद नहीं कर सकता। तो इसीलिए आने का, अगर आप कंपनी जाओगे तो रिसेप्शन में कौन होती है? स्त्री होती है। कोई गुस्सा होके आता है तो स्त्री का सूर्य देख के शांत हो जाता है। तो वास्तव में अगर हाँ भगवद गीता का 15वां अध्याय देखते हैं, उसके पहले श्लोक में भगवान बोलते हैं ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम्, कि ये भौतिक जगत है, ये एक प्रतिबिंब है आध्यात्मिक जगत का। तो इस भौतिक जगत में देखते हैं वो सत्य नहीं है, क्योंकि ये प्रतिबिंब में कुछ दिखता है तो क्या होता है, कुछ समय के लिए दिखता है, बाद में एक अगर लहर आ गई तो सारा जो प्रतिबिंब है वो नष्ट हो जाता है। पर जो प्रतिबिंब में दिखता है उससे जो सत्य में है उसकी हमें कुछ झलक मिल सकती है, कुछ समझ मिल सकती है। तो ये जो सब भक्त अलग अलग भूमिकाएं लेकर भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो सेवा के लिए जो मैं अभी मनोविज्ञान का बात बता रहा था, तो सेवा के लिए जो स्त्री का शरीर और स्त्री का मन है वह सबसे तत्पर है। और इसीलिए जो जितने प्रगतिशील भक्त है उनको भगवान की सेवा के लिए अधिक अधिक सुविधा दी जाती है। तो जो भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्त है उनको सर्वश्रेष्ठ सुविधा दी जाती है योग माया के द्वारा भगवान की सेवा करने के लिए। और जो सर्वश्रेष्ठ सुविधा क्या है? गोपी का रूप, एक स्त्री का शरीर। तो इसीलिए इसमें कोई भौतिक कलबश है ही नहीं। जो गोपियां जो है वो उसी प्रकार के भक्त है, उससे भी बड़े भक्त, जैसे कि हनुमान है या यशोदा माई है या अर्जुन है, उनसे भी सर्वश्रेष्ठ भक्त है वो। इसीलिए उनको एक सुविधा दी गई है भगवान की सेवा करने के लिए। तो ये हमें समझना है कि भौतिक जगत में जो कार्य होता है वो सब भौतिक काम वासना के आधार पर होता है। भौतिक काम वासना के आधार पर मतलब तुम मुझे क्या दे सकते हो। मैन ट्रीट वुमेन लाइक अ सेक्स मशीन, वुमेन ट्रीट मैन लाइक अ एटीएम मशीन। कि पुरुष क्या देखते हैं कि स्त्री से मुझे कितना भोग मिलने वाला है, और स्त्री देखते हैं कि पुरुष से मुझे कितना पैसा मिलने वाला है। तो इसमें जो अगर सेवा भी होती है वो स्वार्थ के लिए सेवा होती है। पर जो भक्ति है उसमें निस्वार्थ प्रेम के कारण सेवा होती है। और वही जो प्रेम है सब भक्तों में दिखता है, हनुमान में दिखता है, अर्जुन में दिखता है, यशोदा माई में दिखता है, वही प्रेम सर्वोच्च रूप में गोपियों में दिखता है। तो गोपियों की रास लीला को समझने के पहले हम जानते हैं कि जब भगवान को सरदर्द हो रहा था, तो अभी सरदर्द कोई बड़ी बीमारी नहीं है, सरदर्द थोड़ा सा दर्द हो रहा है, पर गोपियां क्या, भगवान का सरदर्द मिटाने के लिए वो एक पल भगवान को सरदर्द से राहत देने के लिए हमेशा के लिए नरक जाने के लिए तैयार है। वो नरक में कहते हैं उनको, तुम अगर अपने चरण की धूली भगवान के सिर पर लगाने दोगे तुम नरक में जाओगे, हम जानते हैं, पर हम जाने के लिए तैयार है। तो ये लीला हमें सबसे पहले इस पे मनन करना चाहिए, उससे गोपियों के प्रेम के क्या स्तर है वो समझ में आएगा, और फिर हम समझेंगे कि ये रासलीला क्या है। तो अभी रासलीला में जब भगवान ने वेणु बजाई, स्वरित वेणु ना शुष्ट चुंबितम, जब भगवान ने अपनी वेणु बजाई तो क्या हो गया, सब गोपिया अपने घर के सारे कारोबार को छोड़कर जंगल चली गई। तो उनके घर में कुछ कर्तव्य थे, उनके बुजुर्ग थे, उनके पति थे, उनके बच्चे थे, सबको छोड़ के चले गए वो। तो जो गोपी का जो ये कार्य है, यह भगवद गीता का जो श्लोक है सर्वधर्मान परित्यज्य, उसका एक प्रदर्शन है। सब प्रकार के धर्म का उन्होंने त्याग कर दिया। और कभी कभी भक्तों को लगता है कि तो वो गोपियों ने क्यों किया, ऐसे नहीं है कि उनको इंद्रिय, नहीं, वो जानते थे कि हम सब जय भक्त का सर्वोच्च धर्म क्या है, वह है भगवान की सेवा करना। तो बाकी सब की सेवा है पर सर्वश्रेष्ठ जो है वो भगवान की सेवा है। तो रासलीला का तत्व है कि बड़ा गूढ़ है, और कल भी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट के साथ मैं अभी विराम दूंगा कि जो गोपियों की महानता क्या है, कि खुद की बिना कुछ परवाह किए जब गोपियां घर छोड़ के जा रही थी, तो ये उनके वैराग्य का प्रतिदान है, ये प्रदर्शन है क्योंकि वो जानते थे कि उस समय वैदिक संस्कृति में अगर स्त्री रात को घर छोड़ जाती है तो कभी उसको घर में ले गए नहीं वापस। हम जानते हैं प्रभु श्री रामचंद्र को वो एक धोबी ने आरोप लगाया था और प्रभु ने सीता को छोड़ दिया फिर कभी, तो वो तो जानती थी कि हम कभी वापस नहीं आ पाएंगे, पर फिर भी भगवान की प्रसन्नता के लिए गोपियां सब कुछ छोड़ के चली गई। तो कभी कभी भक्तों को लगता है कि प्रभुपाद जी ज्यादा ये भगवान के लीलाओं के अनुभव नहीं करते, बहुत ज्यादा तत्व ज्ञान के बारे में बोलते हैं, या इस्कॉन में कभी बोलते कि आप ब्रज गीत नहीं गाते हैं, आप सिर्फ हमारा जीवन सदा पापे रहता इस प्रकार के गीत गाते रहते हैं, ज्यादा रस नहीं होता है। तो कभी कभी लोग सोचते कि हम वृंदावन में जाएंगे और राधे राधे श्याम श्याम गाएंगे और वहां पे भक्ति का अनुभव करेंगे, पर नहीं, जो वृंदावन के ब्रजवासियों का भाव क्या है वो है निस्वार्थ सेवा। और ऐसे किसी भी चीज की परवाह किए बिना भगवान ने जब वेणु बजाई तो गोपियां सब कुछ छोड़ के चले गए। तो वैसे ही वही भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और चैतन्य महाप्रभु वेणु में बजाए, पर चैतन्य महाप्रभु शब्दों से क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं यार देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु है तारा यही देश, जिसको भी मिलते हो आप उनको प्रचार करो। तो ठीक उसी से प्रभुपाद जी ने अपने सब बाकी उपधर्मों का त्याग कर लिया, परिवार का त्याग कर दिया, बिजनेस का त्याग कर दिया, खुद के सेहत की परवाह नहीं की, खुद के जीवन की परवाह नहीं की, खुद के शुद्धता की परवाह नहीं की, कई सालों तक अमेरिका जाएंगे तो हम दूषित हो जाएंगे, सब कुछ छोड़ दिया। प्रभुपाद जी अमेरिका गए तो उनको पता नहीं था कि मैं जीवित वापस भी आऊंगा या नहीं, फिर भी चले गए और निस्वार्थ भाव से भगवान के संदेश का प्रचार किया। तो प्रभुपाद इज द क्विंटेसेंशियल ब्रजवासी, वह सर्वोच्च ब्रजवासी है। कि ब्रजवासी वो व्यक्ति नहीं जो राधे राधे श्याम श्याम बोल देता है, ब्रजवासी वो व्यक्ति है जो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है। और प्रभुपाद जी ने गोपियों का भाव था सब कुछ त्याग करके निस्वार्थ भाव से जो भगवान को प्रसन्न करना है उसके लिए करना, उसको कार्य करना। तो प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत का तात्पर्य में लिखते हैं कि अगर आपको गोपियों का प्रेम विकसित करना है तो कैसे करना है, the way to develop gopis love for Krishna is to spread Krishna consciousness all over the world. क्यों? अगर आपको गोपियों का प्रेम जागृत करना है तो कैसे करना है, कृष्ण भावना का प्रचार सारे विश्व भर में करो। क्यों? क्योंकि वो राधा कृष्ण जो रासलीला कर रहे हैं वही राधा कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आया, श्री चैतन्य महाप्रभु में बता रहे हैं कि आप प्रचार करो। तो हमें भक्ति कैसे प्राप्त होगी, भक्ति का मतलब क्या है, जो भगवान की प्रसन्नता के लिए है वो कार्य करना। तो वो कार्य अगर हम करेंगे तो जरूर हमारी प्रगति होगी और हम भक्ति के उच्च स्तर को प्राप्त होंगे। और भक्ति के उच्च स्तर को प्राप्त नहीं भी हुए तो योग क्षेमम वहाम्यहम, जिंदगी भर अगर हम भगवान के प्रचार के लिए समर्पित रहेंगे, भले ही हम पूर्ण शुद्ध नहीं बने हैं, भले ही हम निष्ठा तक ही पहुंचे हैं, अनाथ निवृत्ति पूरी नहीं हुई है अब तक, पर अगर हम प्रामाणिकता से भगवान की सेवा करेंगे तो जो भी हमारी हृदय में कमी है भक्ति में उसको भगवान संभाल लेगी और हमको भगवत नाम ले जाएंगे। इसके विपरीत अगर कोई आके वृंदावन में से राधे राधे शाम शाम करते रहेगा तो उनको भक्तों की कृपा नहीं मिलेगी, प्रभुपाद जी की कृपा नहीं मिलेगी और पुनः भौतिक जगत में भ्रमण करते रहेगा। तो इसीलिए जो हमें मिला है मौका भगवान की साधना करने, भगवान की साधना करने का, भगवान का प्रचार करने का, दिस इज द रॉयल वे टू एंटर इन टू वृंदावन, यही राजमार्ग है वृंदावन की भक्ति और वृंदावन के धाम में प्रवेश करने का। तो इसकी आगे चर्चा हम आगे करेंगे कल। सारांश में हमने देखा शुरू से पहले ये गोपी गीत जो है इसकी विशेष जो स्तर है, पांच सर्कल, पांच से बारह सर्कल ज्ञान, उसमें भगवान का ज्ञान, उसमें वेदों में भगवान का ज्ञान, उसमें भागवतम में भगवान का ज्ञान, उसमें भागवतम दर्शन करने भगवान के चेहरे का, भगवान के स्मित का वर्णन इस रास पंच अध्याय में, उनमें भी जो भावनाएं हैं उसका वर्णन इस अध्याय में आता है, बाकी सब में घटनाओं का वर्णन है, इस भावनाओं का अधिक वर्णन है। तो ये रासलीला ये भौतिक नहीं है, ये हम उसके फलश्रुति समझ सकते हैं। तो फलश्रुति के हमने कई विरोधाभास देखे कि यह भगवान की अंतरंग लीला है पर यहाँ पे विष्णु का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, स्त्री पुरुष के संबंध जैसे रखता है पर इससे काम वास्तव दूर रहेगी बताया गया। और इतना ही नहीं, हम देखा कि नौवे स्कंद में काम वासना जितना देने के बाद स्कंद में शुक्रदेव गोस्वामी बताएंगे ये लीला को, अगर वो काम वासना की जैसी है। और कौन सा गुणगान कर रहा है, जो काम वासना से पूरा मुक्त है ऐसे व्यक्ति क्यों उसका गुणगान करेंगे, तो ये काम ये रास्ते समझने के पहले हमको समझना है कि हम कौन हैं और भगवान कौन है। हम कौन है समझना, उसके उन्होंने राधानाथ महाराज की वो प्रसंग बताया कैसे डूइंग पीएचडी विदाउट पासिंग केजी। और फिर तो हमें भगवान कौन है समझने के लिए उनका स्तर पहले समझना है, फिर कार्य समझना है, नहीं तो गलत हो जाए, गलत फहमी हो जाएगी। जैसे कि डॉक्टर और न्यायाधीश के, सर्जन और न्यायाधीश के बारे में देखा, तो इसके बाद में ये लीला क्या है। लीला मतलब एक नाटिका के समान है, उसमें भगवान एक्टर है, योगमाया डायरेक्टर है और वापस भगवान स्क्रिप्ट राइटर जैसे है। तो अचिंत भेदाभेद के रूप में भगवान नियंत्रण में है। तो भगवान वो सब भूमिकाएं अदा करते हैं जिससे कि भक्तों भक्ति के रस अधिक से अधिक प्रकट हो। और वो हमने वात्सल्य रस में कुछ लिया, कुछ वर्णन किया। और जो सर्वोच्च भक्त है उनको सर्वोच्च सुविधा दी जाती है सेवा करने की, और वह है एक स्त्री का, एक गोपी का रूप। तो ये भौतिक जगत का जैसे कुछ है ही नहीं, ये शुद्ध भक्त है उनको एक सुविधा दी गई है भगवान की सेवा करने के लिए। और फिर उसमें हमने देखा अंत में कि कैसे वो जो गोपियों की प्रेम क्या विशेषता है, निस्वार्थ भाव से भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो भी जरूरी है वो करना। और वही भाव था श्री प्रभुपाद का विश्व भर प्रचार करने में। तो उनको जब हम सहयोग करेंगे प्रचार करने में, उससे हम भी ब्रज भक्ति में प्रवेश कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की, इताय गौर प्रेमानंदे। थैंक यू। वी हैव टाइम फॉर क्वेश्चंस। ओके तो इनका सवाल है कि वो फलश्रुति जो बताई जाती है अलग अलग लाव के अंत में, वह कब हम उसको हमारे जीवन में अनुभव कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं रासलीला के बारे में बताऊंगा, फिर बाद में जनरल बताता हूँ कि रासलीला में जरूर यह है, अगर हम तत्व ज्ञान के साथ रासलीला सुनेंगे तो हम समझेंगे कि ये प्रतिबिंब है और ये असलियत है। तो फिर प्रतिबिंब के प्रति आकर्षण छोड़ के हम असलियत की ओर आकर्षण जागृत करेंगे। पर क्या हुआ है, अभी तक हमारा तत्व ज्ञान अच्छी तरह से हमने स्वीकार नहीं किया, सुना है पर स्वीकार नहीं किया है। जो शास्त्र कहते हैं इंद्रिय तृप्ति से दुख मिलने वाला है, जैसे मैं कल बताया था, द स्क्रिप्चर्स से सेंस ग्रेटिफिकेशन लीड्स टू मिजरी, वी सीक्रेटली डिसबिलीव इट। नहीं नहीं ऐसे नहीं, कैसे हो सकता है ऐसे, हमें विश्वास नहीं है कि इंद्रिय तृप्ति से दुख मिलने वाला है, हमको लगता है नहीं सुख मिलेगा। तो क्या है, ये हमको अभी तक विश्वास नहीं है कि ये प्रतिबिंब है, हमको लगता है ये असलियत है। जो शुद्ध भक्त होते हैं वो प्रतिबिंब को देखते हैं तो उनको असलियत की याद आती है। वो जब इस भौतिक जगत में देखते हैं कोई पुरुष बोल रहे भगवान की नकल कर रहे हैं, पर जब हमारा दुर्भाग्य है कि हम प्रतिबिंब को देखते हैं तो उसको असलियत मान बैठते हैं और उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। पर उतना ही नहीं, जब हम असलियत को देखते हैं तो हमें प्रतिबिंब की याद आती है। मतलब भगवान की गोपियां लीला सुनते हैं तो उनको यहाँ पे जो मूवीज देखे हैं वो याद आते हैं। तो उसके कारण जब तक हम तत्व ज्ञान में अच्छी तरह से नहीं है और कुछ हद तक सिद्धिकरण नहीं हुआ है, उसे तब तक ऐसे बेहतर है कि हम भगवान के लीलाओं का तत्व समझ सकते हैं, पर उसके डिटेल्स में जाएंगे हम। जो गोस्वामी ने कुछ ग्रंथ लिखे है वृंदावन में, लोई बाजार में वगैरह वगैरह, तो अनेक ग्रंथ मिलते हैं। रूप गोस्वामी लिखा हुआ, विश्वनाचार्य ठाकुर ने लिखा हुआ, कई कर्णपुर ने लिखा हुआ, तो कई बार भक्त जाके वो ग्रंथ खरीद लेते हैं, पढ़ने लगते हैं। पर क्या होता है, वो असलियत है और ये प्रतिबिंब है, पर हम क्या होते हैं वो देखकर विस्मित हो जाते हैं। तो इसीलिए जो पूर्व आचार्य के ग्रंथ है वो अगर पढ़ने हैं तो हमारे वरिष्ठ वैष्णवों की इजाजत और उनके आशीर्वाद लेकर पढ़ने चाहिए। तो ये रासलीला की फलश्रुति है, वो जरूर फलश्रुति जरूर पूरी होगी, पर सावधानी से हमें करना है। प्रभुपाद जी बोलते हैं, प्रभुजी को भक्त ने पूछा कि कृष्णा भक्त उन्होंने रासलीला का वर्णन किया है, कई जगह पे माधुरी रस का वर्णन किया है, तो वो हमें पढ़ना चाहिए कि नहीं। तो प्रभुपाद जी बोले कि अब पढ़ो, अगर मन विचित हो रहा है तो मत पढ़ो। प्रभुपाद प्रैक्टिकल, आपको आपको खुद ही जानते हैं आप। वहां पे क्या होता है कि जब तक हम में भोग करने का भाव है, तो जब हम रासलीला पढ़ते हैं तो हम देखते हैं क्या कि हम जो पुरुष भाव होता है, स्त्री में पुरुष भाव होता है, पुरुष में भी पुरुष भाव। पुरुष भाव मतलब कि मैं भोगता हूं, जब भाव होता है तब हम रासलीला पढ़ेंगे तो हम खुद को कृष्ण के साथ आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे लोग मूवी देखने आते हैं तो पिक्चर देखते हैं तो क्या देखते हैं, वो हीरो देखते हैं, वो किसी को पीटता है तो क्या करते हैं, पाटते तो बाजू वाला थार मारता है उसको, और फिर वो सहन जाते हैं थोड़ा। तो क्या करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं किसी का। जब हम कुछ सुनते हैं तो किसी व्यक्ति के साथ आइडेंटिफाई करते हैं। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं वो गोपियों के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, और वो समझते मैं भक्त हूं और गोपियां महान भक्त है। देखो भक्त और भगवान में कैसे आदान प्रदान हो रहा है। तो जब तक हम शुद्ध नहीं है तो हम क्या करेंगे, भगवान के साथ खुद को मानेंगे और कैसा भोग करना है, मुझे भोग करना है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते थे कि अगर आप सुन पढ़ने से विचलित हो रहे हैं तो मत पढ़ो उसको। तो पर प्रभुपाद जी बड़े एक्सपर्टली, बड़े दक्षता से बीच बीच में बार बार तत्व ज्ञान का डोज देते हैं, तो उससे कि हम गलतफहमी नहीं होगी हमको। और बाकी सब जो फलश्रुति है उसके संबंध में जरूर फलश्रुति वो सत्य होती है, पर वो भाव हमें अच्छी तरह समझना चाहिए। जैसे कल हम उस श्लोक पढ़ रहे थे अजामिल का, कि म्रियमाणो पि हरेर नाम, कि मृत्यु के समय अजामिल ने एक बार भगवान का नाम लिया, और वो भगवान को उद्देश्य हुए नाम लिया, अपने पुत्र को उद्देश्य हुए नाम लिया, और फिर भी क्या हो गया, वो भगवत धाम चले गए। तो शुद्ध गोस्वामी क्या कहते हैं, तो हम सब वैसे ही करेंगे, हम भी किसी वेश्या के पीछे लग जाएंगे और फिर एक पुत्र का नाम लेंगे नारायण, और फिर हम उसे नहीं। वो क्या कहते हैं कि फिर अगर हम जिंदगी और भगवान का नाम लेंगे तो क्यों हमें भगवान की कृपा नहीं मिलेगी। तो यह भाव है। तो कैसे है, भगवान गॉड इज अ पर्सन, भगवान एक व्यक्ति है और उनका एक हृदय है और उनका एक मस्तिष्क है। गॉड हैज अ हार्ट एंड अ हेड। तो ये जो शास्त्रों में फलश्रुति आती है वो भगवान के हृदय की करुणा का प्रतिकरण का प्रदर्शन है। तो जरूर संभव है कि इतनी भगवान कृपालु है कि एक बार अजामिल ने नारायण नाम लिया तो भगवान ने उसका उद्धार कर लिया। तो इससे क्या दिखता है कि भगवान कितने कृपालु है। सो द स्क्रिप्चुरल एग्जाम्पल्स ऑफ द लॉर्ड मर्सी दे इंडिकेट हिज मैग्नानिमस हार्ट। पर ऐसे नहीं है कि ऐसा सबके साथ होना ही चाहिए, और ऐसे नहीं है कि अगर वैसे नहीं हुआ तो वो असत्य है। जैसे अगर आप कहते हो कि ये व्यक्ति इतना उदार दिल है, उसने इस व्यक्ति को 10 लाख रुपए डोनेशन दे दिया, और फिर अब जाते हैं कि बोले तुम 10 लाख नहीं दिया तो तुम्हारा कुछ काम कर, तुम झूठ बोलते हो कि तुम डोनेशन नहीं दिया। नहीं, वो व्यक्ति के भाव पर निर्भर है, पर जरूर उदार दिल है। तो क्या होता है, I'll speak this in English, then I'll try to translate in Hindi. I won't be able to speak properly. See, Krishna has a head and a heart. So, when the devotee approaches the Lord with a repentant heart, then that attracts the Lord's compassionate heart. Ye thamam prapadyante. As all people approach me, I reward him accordingly. But if we approach Krishna with a calculative head, then Krishna will also reciprocate with a calculative head. Matlab, अगर हम कहते हैं कि यानी कानी जप पानी ब्रह्म हत्यधिकानी च तानी तानी प्रणशंति प्रदक्षिणा परे परे, अभी मैंने एक बार प्रदक्षिणा कर लिया है तो ब्रह्म हत्या भी चल गया, तो वैष्णव का अपराध का प्रॉब्लम ही नहीं है कुछ। तो वैसा कैलकुलेट करेंगे तो भगवान भी कैलकुलेट करेंगे, देख कितने पाप से कितने जन्मों से भुगो तुम, भुगतो तुम। तो ये जो है भाव हमें समझना चाहिए कि जब हम हमारे हृदय से रिपेंटेंट पश्चाताप के साथ हम भगवान को पुकारते हैं, तो भगवान उनके हृदय से करुणा से उसका रेसिप्रोकेशन करते हैं। पर अगर हम कैलकुलेट करते हैं इतना करूंगा तो इतना होगा, तो वैसे नहीं होगा। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हृदय में ऐसे जो फलश्रुति देखते हैं उससे भगवान कितने करुणा में है उसमें श्रद्धा जागृत करनी है, और फिर भले ही उतनी करुणा हम पर भगवान नहीं करेंगे। ओके, आई स्पीक दिस इन इंग्लिश, कि द नॉन स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स ऑफ मर्सी शुड इंक्रीज अवर फेथ इन द स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉर रिसीविंग मर्सी।
अभी जो अजामिल का उदाहरण है ये स्टैंडर्ड नहीं है, सबके यहां पैदा होगा ऐसा नहीं है, ये नॉन स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है कि जो असाधारण उदाहरण है भगवान की कृपा के, उससे क्या हमें समझना चाहिए कि जो जो हमारी नियमित पद्धति है उससे तो जरूर भगवान की कृपा हमें मिल जाएगी। तो वही वो भाव शुक्ल गोस्वामी के, उन्होंने नारायण एक नाम लिया मृत्यु के समय पर अपने पुत्र को, पुत्र को उल्लेखित करते हैं। तो हम जिंदगी भर अगर भगवान का नाम लेंगे, भगवान को उद्देश्य कर रहे तो भगवान क्यों हम पर कृपा नहीं करेंगे, तो ये भाव होना चाहिए। तो फलश्रुति के बारे में वो सत्य है, बट इट इज नॉट दैट दे हैव टू हैपन इमीडिएटली और दे हैव टू हैपन एवरी टाइम, बट दे इंडिकेट द एक्सटेंट ऑफ द मर्सी ऑफ द लॉर्ड एंड वी विल गेट एट लीस्ट सम ऑफ हिज मर्सी। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।